भक्तजनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस शुक्रवार के कार्यक्रम में आने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी 2 मार्च को हम श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मनाएंगे और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा याचना के लिए हमने सोचा कि थोड़ा सा वो मूड प्रिपेयर करने के लिए कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति ज्यादा समर्पित हो, उनके बारे में हम ज्यादा सुने, उनके बारे में ज्यादा जाने और ताकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को और अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसके प्रति हम आकर्षित हो। तो आज मैंने सोचा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ट्रैवल है दक्षिण भारत में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा की, थोड़ा उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत ही अच्छा भजन गाए हैं जिसमें वो कहते हैं, गौरा मार जे सब स्थाने करि लो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि वो आमी प्रणय भकत संगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ पर भ्रमण किया उन्होंने और जिस जिस स्थान पर गए, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ वहां पर जाना चाहता हूँ। तो आप जैसा जानते हैं कि अभी मायापुर में गौर मंडल परिक्रमा शुरू हो गई है और कुछ भक्त लोग वहां पर गए हैं, जा सके, पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं वहां जा सकते हैं। तो हम फिजिकली नहीं जा सकते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा हम मानसिक रूप से परिक्रमा करते हैं, थोड़ा हम श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर अनुगमन करने का हम थोड़ा प्रयत्न करते हैं और थोड़ा उनसे सीखते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा ही उत्साह मिलता है जब भी मैं मुसफा में यहाँ पर आता हूँ कि इतनी भारी संख्या में और इतने अच्छी तरह से प्रेम से आप लोग सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो आज सुबह मैं अपने सिटी में बता रहा था कि 4 प्रकार की हियरिंग होती है जो हम सुनते हैं, वो भी 4 प्रकार का होता है। तो पहले प्रकार का हियरिंग जो होता है उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल हियरिंग। एक्सीडेंटल हियरिंग का मतलब होता है अकस्मात, ऐसे ही सुन लिया, कोई इच्छा नहीं थी सुनने के लिए या कोई प्रयत्न नहीं किया लेकिन सुनने में आ गया। जैसे समझो कोई व्यक्ति बैठ के टीवी शुरू करे और टीवी कोई कृष्ण कथा सुनने के लिए शुरू नहीं करता है, तो उसने शुरू किया कुछ और देखने के लिए लेकिन अचानक आस्था चैनल चालू हो गया और आस्था चैनल के ऊपर हमारे को इस्कॉन के प्रभु जी उनको दिखाई दे दिए और वो कुछ बोल रहे थे, वो कान में कुछ बात इधर उधर गिर गई और फिर उसने सोचा कि चैनल चेंज करता हूँ। लेकिन चैनल चेंज करने में जो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है उसमें 1-2 मिनट के अंदर कुछ सुन लिया, तो इसको बोलते हैं अकस्मात, एक्सीडेंटल हियरिंग, जानबूझ के नहीं। लेकिन उससे अच्छा हियरिंग जो होता है उसको बोलते हैं पर्पसफुल हियरिंग। सो पर्पसफुल हियरिंग मतलब जैसे आप सब लोग कर रहे हैं कि एक हेतु लेकर यहाँ पर आए हैं, अपना काम धंधा जो भी है उसको छोड़ के और कम से कम अपने घर से निकल के गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के, पैदल चल के और अपने आप को यहाँ तक लेके आए हैं, पर्पसफुल हियरिंग, सुनने के लिए कि नहीं हम कृष्ण कथा सुनेंगे, श्री गौर कथा सुनेंगे और गौर कीर्तन करेंगे और भक्तों का संग करेंगे और भक्तों के संग में भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा एक हेतु लेके हम आए हैं। तो ये दूसरी प्रकार की हियरिंग हुई। लेकिन इससे भी और अच्छी एक हियरिंग है जिसको बोलते हैं मेडिटेटिव हियरिंग। सो मेडिटेटिव हियरिंग मतलब कि सुनते हुए और मेडिटेट करना कि हमने क्या सुना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सुनने के लिए आते हैं लेकिन क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है, कंडीशनड है, कई बार हमारा मन जो है वो इधर उधर घूमते रहता है ना, ये मन मेरा बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही बहल जाए और कहीं चला जाता है। तो कितने लोगों को ऐसा अनुभव है कि कभी हम लोग बैठे रहते हैं लेकिन हमारा मन जो है वो घूमते रहता है और सभी लोग हमारा मन जो है ये घूमते रहता है और मन का ये सब सारा खेल है, सारा प्रॉब्लम माइंड गेम है। इसके लिए अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, सोचो अर्जुन की क्या विशेषताएं थी, उसकी क्या योग्यता थी कि अर्जुन ने अकेले जब विराट देश में था, पूरी कुरु सेना को हरा दिया था, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि लोग थे, ऐसे लोगों को अर्जुन ने हरा दिया था पूरा। और एक बार अर्जुन ने महादेव के साथ युद्ध किया था, भगवान शिव के साथ में, और तो और वो अपना चले गए थे इंद्रलोक में, और इंद्र के आधे सिंहासन पर जाके बैठ गए, और इतना सब उनके अंदर था। और उर्वशी जब उनको बहलाने के लिए आई तो भी वो मचल नहीं गए। सोचो, उर्वशी जैसी अप्सरा अगर उनके सामने आती है, और तब उर्वशी ने उनको श्राप दिया था, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन वैसा अर्जुन भगवान को क्या कहता है गीता में, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवस दुष्करम। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है और इसको मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता। प्रमाथी पागल है, बलवत बहुत ताकतवान है, और दृढ़म मतलब बहुत दृढ़ है, और तस्याहम निग्रहम मन्ये, और इस मन को कंट्रोल करना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है कि आई कैन कंट्रोल विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल माइंड। कि मैं एक वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, अब सोचो वायु को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कोई चांस नहीं है। लेकिन अर्जुन कर सकता था, पर वो कहता है मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो मन हमारा इधर उधर भागते रहता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो हम श्रवण करते हैं उस श्रवण को फिर मनन करना चाहिए। जैसे श्रवण करो और चरवण करो, ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। इस कान में आए हो तो इस कान से सुनो, अंदर लेके जाओ, उसको थोड़ा समझो, और फिर मुंह से बाहर निकालो और प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु है तारो ही देश। तो मनन करना चाहिए। और मैं कई बार ये बात बताता हूँ कि जब भागवत क्लास खत्म होती है और हम भागवत को बंद करते हैं, और उसके बाद भागवत हमारे हृदय में खुलना चाहिए। भगवत गीता क्लास बंद होती है, गीता हम जब बंद करके उठते हैं तो उसको अपने हृदय में खोलना चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि जैसे समय मिलता है लोग तुरंत चाओ 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 बोलना सबका चालू हो जाता है। मनन करना चाहिए कि हमको ये आदेश क्यों मिला, हमने क्या सुना इसके अंदर, और इसके अंदर हमको क्या एक पॉइंट आज हम लोग घर पे लेके जा रहे हैं, भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, भगवान के भक्तों की लीला के बारे में हमने क्या सुना, आज हमारे को जीवन में क्या क्या पता चला, मेडिटेटिव हियरिंग। और उससे भी अच्छा स्तर का जो हियरिंग है उसको बोलते हैं एप्लीकेटिव हियरिंग। एप्लीकेटिव मतलब जो सुना उसको जीवन में उतारना है ना। नहीं तो खाली सुना और सुन के चले गए तो ठीक है, मेडिटेटिव हियरिंग अच्छा है, लेकिन पर्पसफुल मेडिटेटिव एप्लीकेटिंग हियरिंग इज द बेस्ट। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं उसको, कि जो सुना उसको जीवन में उतारना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण भावनामृत। नहीं तो खाली सुन के चले गए तो कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए, सेवा की भावना आनी चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन सब हियरिंग के बीच में एक और तरह का हियरिंग है जो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो है सिलेक्टिव हियरिंग। सिलेक्टिव हियरिंग का मतलब है कि जो मुझे सिलेक्ट करना है मैं उतना ही करूंगा। मतलब कभी कभी हम लोग हमारी सीमा तय करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, एक लिमिट बना देते हैं कि प्रभु जी आप 10,000 लेक्चर भी दो, लेकिन हमको बस 2 माला ही करना, हम 2 माला से आगे बढ़ेंगे नहीं। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी गौरांग प्रभु एक डॉक्टर को प्रीच कर रहे थे बॉम्बे के अंदर, और वो डॉक्टर बहुत कठिन डॉक्टर था। बहुत समझाने बुझाने के बाद और बहुत चर्चा करने के बाद उसने 4 मंत्र, 4 माला नहीं, 4 मंत्र करने का प्रॉमिस किया कि प्रभु जी मैं 4 मंत्र करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 बार बस। तो ऐसा वो 4 मंत्र करना शुरू किया, रोज 4 मंत्र करता था, और कभी कभी जब गौरांग प्रभु मिलते थे तो उनको रिपोर्ट करता था कि मैंने आज 4 मंत्र किया, फिर मैंने 5 मंत्र किया, अभी 8 मंत्र पे आया हूँ। ऐसा करते करते एक बार वो खड़े थे प्रभु जी, और दूसरे भी बहुत सारे डॉक्टर उनके आसपास में खड़े थे, तो आके प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी आजकल मेरा 64 चल रहा है। तो बाकी लोगों को झटका लगा, ऐसे आदमी को इसने 64 माला लगा लगा दिया। तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई किया, बोला 64 माला नहीं है, 64 मंत्र है। तो बहुत मुश्किल है, कई लोग अपनी सीमा तय करते हैं कि भाई मैं यही करूंगा, इतने तक ही आगे बढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, प्रोग्राम में आऊंगा लेकिन सेवा नहीं करूंगा ना। बहुत सारी ऐसी हम हमारी सीमा तय कर लेते हैं। तो सिलेक्टिव हियरिंग नहीं होना चाहिए, पर्पसफुल मेडिटेटिव एप्लीकेटिव हियरिंग होनी चाहिए और उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर देखो जो भगवान के पास आता है, भगवान गीता में बात बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतम अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, एक जो दुखी है, एक जिसको धन चाहिए, एक जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है। तो जिज्ञासु और ज्ञानी बहुत कम लोग होते हैं, ज्यादातर लोग भगवान के पास आते हैं धन के लिए, या फिर सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो है दुखी होकर आते हैं। जब माया की मार पड़ती है हमारे को और दुनिया के अंदर तरह तरह की चीजें हम सहन करते हैं और हर जगह से पीठ पाट के एकदम जब हालत खराब हो जाती है तो जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है और वो भगवान के पास आता है दुखी होकर आता है। बहुत सारे कम लोग होते हैं जिनको जिज्ञासा रहती है कि जिज्ञासा करते हुए लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो श्रेणी है ये यही है कि दुखी लोग आते हैं और ये संसार जो है ये पूरा दुखी लोगों से भरा हुआ है। अभी जैसे समझो आप किसी बकाला में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो या वेंडिंग मशीन लगी रहती है, तो वेंडिंग मशीन के अंदर आप देखते हो कि चलो दो दिरहम डालेंगे तो कोई चीज मिलेगा, समझो जूस है, तो जैसे ऑरेंज जूस जो होता है उसके ऊपर लेबल लगा रहता है ऑरेंज जूस का, ठीक है, मैंगो जूस के ऊपर मैंगो जूस का लगा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि वेंडिंग मशीन में वो उल्टा रखा रहता है और हमारे को दिखता नहीं है, उसका जो स्टिकर है वो दिखता नहीं है, लेकिन समझ में आता है ऑरेंज कलर का मतलब ऑरेंज जूस होगा, पीला है तो मैंगो जूस होगा, है कि नहीं। और हम लोग पैसा डालते हैं, बटन दबाते और वो वहां से ले लेते हैं, है ना। आप लोग सबने वेंडिंग मशीन यूज किया ना, तो कभी कभी हमको ग्रीन कलर का बॉटल समझे उसमें दिखाई देवे और हम लोग वो पीने के लिए जा रहे तो हमको क्या लगेगा, ग्रीन मतलब ग्रेप्स होगा या फिर कीवी होगा, चलो ले लेते हैं, लेकिन जैसे निकालते खोल के पीते हैं तो कड़वा निकलता है, क्या है, करेला। तो करेले का जूस निकला, ग्रीन कलर है लेकिन करेला है, तो आदमी सोचता रहे ये क्या हो गया, करेला कैसे निकल गया उसमें, है क्या नहीं। और उसमें थोड़े बहुत आप आम के टुकड़े डालो या शक्कर डालो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, करेला मतलब कड़वा। तो ये संसार जो है ये भी एक बॉटल में भगवान ने जूस के जैसा भरा है और उसके ऊपर स्टिकर लगाया है और स्टिकर का नाम क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। और वो स्टिकर क्या है, वो स्टिकर है, वो स्टिकर है भगवत गीता, थोड़ा मोटा स्टिकर है लेकिन स्टिकर है, भगवान ने लगाया है उसके ऊपर। तो उस बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने इस दुनिया के अंदर ये स्टिकर लगाया है दुखालयम अशाश्वतम, ये जो है हर जगह पे यहाँ पर तुमको सुख शांति कुछ मिलने वाला है नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये सारा का सारा चीज उसमें फिट पड़ा है। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं 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 ये ऐसा कैसे हो गया, जैसे एक बार हमारे एक मंदिर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसमें बहुत अच्छा केक बनाया और इतना अच्छा केक था कि बहुत सारे लोग, जैसे भी हम लोग कोई प्योर डिवोटी तो है नहीं, सब लोग बद्ध जीव है, सोच रहे थे कह रहे बाद में हम लोग यू केक तो आने वाला है अपने पास में क्या है। तो कोई भक्त था बहुत टाइम से मेडिटेट कर रहा था और जब प्रसाद के लाइन में लगा तो बैठा, केक दिया गया तो उसने केक उठाया और खाया, लेकिन जैसे ही केक खाया बिल्कुल मुंह बिगाड़ दिया, कह रहे क्या है। तो हुआ क्या था, उस केक में शक्कर डालना भूल गए थे माता जी। तो केक पे इतनी देर से मेडिटेट किया, केक खा रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसको लगा कि ऐसा हो सकता है शायद मैंने ढंग से सही जगह से केक नहीं खाया, तो केक को घुमाया और घुमा के उसको काट के खाया, लेकिन वही शक्कर है ही नहीं उसके अंदर, तो केक को रख दिया, चुपचाप दाल चावल खाने लगा, लेकिन ध्यान बार बार केक पे था कि यार इतनी टाइम से मैंने इसको मेडिटेट किया इस केक को खाने के लिए, क्यों उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। और फिर दूसरों को देख रहा था तो भगवान जब उसमें शक्कर नहीं है स्वाद आएगा कहां से, इस दुनिया के अंदर इतने दुख है, सुख ढूंढने की कोशिश करते मिलता नहीं है, फिर हमको ऐसा लगता है अरे इतनी देर से मेडिटेट कर रहा था कि शादी करूंगा तो थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन ये क्या हो गया या फिर और कुछ, लेकिन मिलता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एनीवे, क्योंकि ये दुनिया बनाने वाले ने इसके ऊपर एक स्टैंप लगाया है और इसी प्रकार से तो इस दुनिया के अंदर अगर हमको जीना है तो भगवान ने उसके लिए मैनुअल भी दिया है, जैसे समझो लैपटॉप है, लैपटॉप को कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए एक मैनुअल दिया जाता है, घड़ी है उसको ऑपरेट करने के लिए मैनुअल दिया जाता है, तो हमारा जीवन जो है उसको ऑपरेट करने के लिए भगवान ने एक मैनुअल दिया है और वो मैनुअल है भगवद गीता। तो हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए, भागवतम का आश्रय लेना चाहिए और प्रभुपाद जी ने अपनी रात्र की निद्रा भंग कर करके इतने सारे उसमें तात्पर्य लिखे परपट लिखे हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ी कृपा करके भगवान ने हमारे को एक शास्त्र दिए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं सत कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नहीं सत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। कि कृष्ण मतलब कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने जीवों पर कृपा करके ये सारे शास्त्र लिखे हैं और ये सारे शास्त्र लिख के हमको दिए ताकि हम भगवान को समझ सके, भगवान के प्रति पढ़ के उनको जान सके, और जब हम भगवान को जानेंगे तब उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, है कि नहीं। अभी सचिन तेंदुलकर इतना फेमस क्यों है, या फिर जो कोई हीरो अगर मूवी में है, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और उसमें एक कला है, अच्छा क्रिकेट बैट बहुत अच्छा चलाता है। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर अगर साउथ अफ्रीका के कोई जंगल में जाएगा तो उसको कोई पहचानेगा ही नहीं, अगर वहां जाकर इधर आएगा तो सब लोग हमारा क्लास छोड़ के भागेंगे उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए, है कि नहीं। लेकिन अगर वही अफ्रीका में जाएगा, कोई पहचानता नहीं उसे, तो अफ्रीका का आदमी सोचेगा इसमें ज्यादा मानसिक, इसमें ज्यादा मानसिक, इसको खाऊं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, उनकी क्रियाओं को नहीं जानेंगे, उनके बारे में उनके गुणों को नहीं जानेंगे, तो उनके प्रति आकर्षित कैसे होंगे। आकर्षित होने के लिए ज्ञान उनके बारे में होना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में पता हमको होना चाहिए। एनीवे, क्योंकि अभी गौर पूर्णिमा का समय और हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा, तो मैं इस टॉपिक पे वापस आने की कोशिश करता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, थोड़े टाइम जगन्नाथपुरी में थे, और उनके बाद में उनका जो मिशन था प्रचार का, प्रचार ही सार है। प्रभुपाद ने उनको चार पॉइंट गए, बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो प्रचार करने के लिए वो बाहर निकले और वहां से उन्होंने दक्षिण भारत जाने का सोचा, साउथ इंडिया। आई थिंक आप में से कोई साउथ इंडिया से है क्या यहाँ पे, सब बांग्लादेश नेपाल से तो वो सोचे कि चलो मैं दक्षिण भारत जाऊंगा, लेकिन अकेला जाना चाहते थे, सबको साथ में नहीं लेके जाना चाहते थे। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु जी मैं जा रहा हूँ थोड़ा कथा कीर्तन करने के लिए या ऐसा है, तो बहुत लोग साथ हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि अकेले जाना चाहते थे, तो उन्होंने भक्तों से कहा कि देखो मेरा भाई विश्वरूप से मेरा संग विच्छेद हो गया था बहुत टाइम पहले, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, कोई घरेलू काम है मेरे पास। तो जैसे समझो कोई व्यक्ति, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि विश्वरूप उद्देश्य अवश्य आमी जाबो, एकाकी जाइबो कहा संगे ना लेइबो, कि अकेले जाऊंगा और किसी को अपने साथ में नहीं लेके जाऊंगा मैं। तो जैसे अगर समझो मैं आप लोगों से कहूं कि देखो मुझे मेरे गांव में जाना है और मेरे गांव में मेरे भाई का मेरे साथ झगड़ा हो गया था, थोड़ा झगड़े को सुलह करना है और हमारा कोई कोर्ट केस भी चल रहा है और उसके अंदर भी थोड़ा मेरे को काम है, तो मैं थोड़ा जा रहा हूँ, आप चलते हो क्या मेरे साथ में? तो आप लोग बोले कि प्रभु जी आप जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप जाओ। लेकिन यात्रा वगैरह ऐसे रहेगी तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपना एक मिशन पे जा रहे थे और उनको उस मिशन को अकम्प्लिश करना था, इसलिए अकेले जाना चाहते थे। तो कोई कह सकता है कि उन्होंने थोड़ा छल किया, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने किसी को साथ में नहीं लेके गए, तो एक रूप से लगेगा कि उन्होंने छल किया है। तो वो कहते हैं विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देश उद्धारित करे नहीं छल। तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा छल क्यों किया, क्योंकि उनका उद्देश्य था दक्षिण देश उद्धारित, कि दक्षिण भारत का जो था वो उद्धार करना था, और उस उद्धार करने के लिए उन्होंने ऐसा छल किया, थोड़ा गलत बोला कि भाई मेरा विश्व, क्योंकि भगवान कौन, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो जानते थे कि विश्वरूप तो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। तो तात्पर्य में ऐसा है कि कभी कभी महान वैष्णव या भगवान या फिर इस प्रकार के जो महान विभूति होती है, वो कभी कभी छल करती है, लेकिन किसी कारणवश किसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे वसुदेव जब कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली और उसके गर्दन पे रख दी, तो वसुदेव ने बहुत डिप्लोमेसी का यूज करते हुए और कंस का बहुत गुणगान किया, भूरी भूरी प्रशंसा की कंस की और उसको बोले कि हे भोज वंश के प्रदीप, और तुम सबसे जो वंश को आगे बढ़ाने वाले हो और उसके दीपक हो, ऐसा ऐसा बोलने लगे, जबकि ये कोई सही बात नहीं था, लेकिन क्योंकि द्रौपदी उसको देवकी को बचाना था। और वही वसुदेव जब बाद में नंद महाराज से मिले तो उनके साथ कोई छल वाली बात नहीं की उन्होंने, और उन्होंने जब नंद महाराज को मिले तो नंद महाराज को उन्होंने कहा कि आपके बच्चे कैसे हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका पुत्र कैसा है, क्योंकि वो जानते थे कि इनके यहाँ पुत्र तो नहीं हुआ था, पुत्री हुई थी और उस पुत्र को एक्सचेंज में ही करके आया था, पुत्री को लेके आया था और अपने पुत्र को छोड़ दिया था। तो भक्तों के साथ जब हम डील करते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई छल ना करें, यू नो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट ओपन। तो वो कहते हैं कि जब ऐसा बात भक्तों को पता चला तो नित्यानंद प्रभु उनको बोले कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अकेले कैसे जा सकते हो और आपका तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ट्रैवल करने का। अरे मुझे साथ में लेके चलो, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जब 11 साल का था तो लक्ष्मीपति तीर्थ आ गए थे मुझे लेके जाने के लिए और 20 साल तक मैं पूरे भारत में भ्रमण किया हूँ, आपको साथ में लेके जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि देखो भाई, पहले तो वो बोले, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्हें सूत्रधार, तुम्हें यही चेना चाहो तई चेनर्तन अमार। बोले कि मैं तो तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। अरे जब मैं संन्यास लेके और वृंदावन जाना चाहता था तो तुमने मुझे शांतिपुर और नवद्वीप में भेज दिया, वापिस से उल्टा कर दिया, अद्वैत आचार्य के घर भेज दिया, और मैं जब और आगे जाना चाहता था तो तुमने मेरा डंडा लिया और डंडे को 3 भागों में तोड़ के फेंक दिया उसको। तुम्हारे साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तुमको मैं साथ में नहीं लेके जा सकता। तो बोले दूसरे भक्तों को लोग, तो बोला नहीं, ये जो जगदानंद पंडित है वो हमेशा मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज करना चाहते हैं, और मैं अगर थोड़ा कुछ ऑस्टेरिटी करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी तपस्या करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुकुंद जो है ये देख के बड़ा दुखी हो जाता है और इसको शोकाकुल देख के मैं शोक में आ जाता हूँ, तो मैं किसी को साथ में नहीं लेके जा सकता। आप लोग मेरे बड़े प्रेमी स्नेही हो, लेकिन मुझे आपका संग विच्छेद करना पड़ेगा और इस बार आप मुझे अकेले जाने दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने एक आइडिया लगाई, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आप जब जाओगे तो साथ में कम से कम एक कमंडलू और 2-3 कपड़े साथ में लेके जाओ, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और आप जब जाओगे तो आप दोनों हाथ उठा के और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करते हुए जाओगे। एक हाथ से आप जप करोगे और दूसरे हाथ से आप काउंटिंग करोगे तो आप कमंडलू पकड़ोगे कैसे? तो कमंडलू पकड़ने के लिए आपको एक सहारे की जरूरत होगी, एक सर्वेंट की जरूरत होगी। तो काल कृष्णदास जो है छोटा सा, ये आप इसको साथ में लेके जाओ, ये आपको कुछ नहीं कहेगा, ये आपके साथ साथ में आपका ध्यान रखेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात मान ली और जाने के पहले वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के जब घर गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जब ये बात पता चली कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ से भी चले जाएंगे दक्षिण भारत में, और उस टाइम कोई ऐसा व्हाट्सएप और कोई मैसेंजर या कुछ था नहीं कि भाई बार बार हम कांटेक्ट कर सके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी जो भक्त लोग गए सब लोग फोटो भेज रहे खींच खींच के मैसेज दे रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। और चैतन्य महाप्रभु का संग बहुत उनको भारी पड़ रहा था, तो भट्टाचार्य ने उनसे कहा कि सुनी सार्वभौम हैला अत्यंत कातर चरण धरिया कहे विषाद उत्तर। तो उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, इतना सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत एजिटेट हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आप ऐसा कैसे हमारा संघ विच्छेद कर सकते हो। और वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे, उनको कहने लगे बहुजन मेरे पुण्य फले पाइनु तुमार संग हेन संग विधि मोर करी लेख भंग। तो बोले ऐसा मत करो, इस संघ का भंग मत करो तुम, अरे अनेक जन्म जन्मांतरों का पुण्य अगर किसी को संचित होता है तब आपका उसको संघ मिलता है, एसोसिएशन मिलता है, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। और वो कहते हैं कि शीरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, कह रहे अगर मेरे सिर पे वज्रपात हो जाए, मेरा सिर फट जाए या मेरा पुत्र भी मर जाए तो भी मुझे इतना दुख नहीं होगा। तो कहते हैं शीरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, ताहा सही तुम्हार विच्छेद सहन ना होए। बोला रे वो सह लूंगा मैं, लेकिन आपका विच्छेद जो है वो मुझसे सहा नहीं जाएगा, कृपया आप ऐसा मत करो, ऐसा छोड़ के हमको मत जाओ। और वो फिर आगे कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूं कि आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आपने जो ठानी है वो आप करके रहोगे। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप दक्षिण भारत जाओगे तो आप निश्चित रूप से जाओगे, क्योंकि स्वतंत्र ईश्वर हो। अगर आपने सोचा है कि आप साथ में किसी को नहीं लेके जाओगे तो आप किसी को नहीं लेके जाओगे, आप अकेले ही जाओगे। मैं ये बात जानता हूं, लेकिन फिर भी एक निवेदन करता हूं। तो क्या निवेदन करते हैं कि स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करीबे गमन, दीन कह दीन कथा रहो देखी तुम्हारा चरण। तो बोलते हैं कि थोड़े दिन के लिए रुक जाओ ताकि हम आपके चरणों का दर्शन कर सके, हमें पता है आप जाओगे, लेकिन थोड़ा दिन थोड़ा और हमारे को कृपा दे दो। तो इतना सुन के चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है थोड़े दिन और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में हम रह लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े दिन और रहे, 5 दिन रहे, लेकिन ज्यादा भी नहीं रहे, 5 दिन रह गए। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का उन्होंने परमिशन लिया। तो देखो मिशन पे अगर हम लोग जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद करना चाहिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए, जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके उनका महागार्लैंड लेके और फिर वो आगे निकले और आगे निकल गए और फिर अपनी जर्नी उन्होंने स्टार्ट की। और वो जर्नी स्टार्ट करके और वहां से सबसे पहले वो अलालनाथ गए। तो अलालनाथ पे चैतन्य महाप्रभु की इस जर्नी में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो चैतन्य महाप्रभु करना चाहते थे। तो एक उनका मिशन था कि संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करना है। तो इसके पहले चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन करते थे वो केवल शिवास आंगन में करते थे, और शिवास आंगन में क्लोज रूम के अंदर खाली जो स्नेही भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के क्लोज एसोसिएट, उनके साथ ही वो कीर्तन करते थे, लेकिन हर किसी के साथ वो कीर्तन नहीं करते थे और बाहर के लोगों ने वो कीर्तन का आस्वादन नहीं किया था। लेकिन रात भर शिवास ठाकुर के घर पे और वो कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल कुछ नहीं भक्त जो थे उनको ही हरे कृष्ण महामंत्र का इस कीर्तन का आस्वादन मिला था, लेकिन वो पूरी दुनिया को देना चाहते थे। और एक और ये रीजन था कि दक्षिण देश में जाके अपने कीर्तन को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। तो अलालनाथ में गए और अलालनाथ के अंदर अपने सब भक्तों के साथ में जो उनके साथ में थे वो वहां पर जाके और कीर्तन करने लगे। और इतना घमासान कीर्तन हुआ वहां पे के पूरा का पूरा जो नगर था वो पूरा कीर्तन में सम्मिलित हो गया। और इसके लिए कृष्णदास गोस्वामी वहां पे लिखते हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं, वो चौधरी की ते सब लोग बोले हरी हरी, प्रेमा वैश्य मध्य नृत्य करे गौर हरी। वो बोले का ऐसी आवाज आ रही थी हर जगह से, हर कोई जो नाम ये था हरी 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 हरी, ऐसा हरी हरी का जप कर रहे थे लोग और सारे के सारे लोग तो जोर जोर से गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य कर रहे थे। अब आप सोचो चैतन्य महाप्रभु जो है गोल्डन अवतार सुनहरा अवतार लेके आए और ऐसा नृत्य करते थे कि उनका नृत्य देख के सब लोग चकाचौंध हो जाते थे, सब पागल हो जाते थे उनको देख के। और चैतन्य महाप्रभु पूरा 7 फीट के बड़े लंबे हर किसी को दिखाई देते थे, अगर नहीं दिखाई देते थे तो ऐसा जोर से जंप मारते थे हवा के अंदर कि हर कोई उनको देख सकते थे। और ऐसा कीर्तन कर रहे थे तो जब वो अपना ये जो रूप लेके जब कीर्तन करते थे उनका उतरिया जो था हवा में उड़ता था और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कहते हैं कंचन सुदेश देह अरुण वसन पुलकर शुकंप स्वेद ताहते भूषण। तो कहते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु कंचन सुदेश देह पूरा तप्त कांचन एकदम तप्त हुए सोने के समान श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर वर्ण था और वो गौर वर्ण रह गए और अरुण वसन और उनका जो उतरिया था ऊपर का जो कपड़ा था वो जब सुबह सुबह जब सूर्य उदित होता है और उसकी जो लालिमा दिखाई देती है वो क्षितिज पे जो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है उस लालिमा के कलर का वो कपड़ा था और वो कपड़ा लेके श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा नृत्य करते थे ऐसा डांस करते थे कि सारे के सारे लोग पागल हो जाते थे। और पुलक मतलब उनका शरीर जो था इतना पुलकित हो जाता था, कंप मतलब उनके शरीर में कंपन होता था, अश्रुधारा का प्रवाह होता था और नाचने की वजह से इतना पसीना उनको आता था, श्वेत ये सब जो था वो उड़ रहा था और ये सब उनके भूषण थे आभूषण थे। तो हम लोगों का आभूषण इसका यही सब आभूषण होना चाहिए डिवोटी का, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई दूसरा चीज सब पहन रहे हैं। तो ये आभूषण लेके श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं और ऐसे शोभायमान हो रहे थे और प्रेम के चिन्ह श्री चैतन्य महाप्रभु में दिखाई दे रहे थे। और ऐसा जब दिख रहा था तो क्या हो रहा था कि सारे के सारे लोग चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो स्त्री हो कोई भी हो हर कोई उस कीर्तन के अंदर सम्मिलित हो गए और जोर जोर से नाच रहा था। के हो नाचे के हो गाय श्री कृष्ण गोपाल प्रेमते भाषीला लोक स्त्री वृद्ध अबाल। कि चाहे स्त्री है या वृद्ध है या छोटा सा बालक है हर कोई इस कीर्तन के अंदर संकीर्तन में शाम में होके और जोर जोर से ध्वनि करके गा रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की क्या बात बताऊं आपको, एक बार महाराज प्रताप रुद्र ने अपने महल के टेरेस पे से श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखा और ऐसा आकर्षित होकर ऐसा अट्रैक्ट होकर उस कीर्तन को देख के कि अपने गुरु भट्टाचार्य को बोलने लगे, बोले ऐसे नृत्य ऐसे प्रेम ऐसी हरि ध्वनि कहीं नहीं देखी यार कहीं नहीं सुनी। बोला ऐसा नृत्य ऐसा प्रेम, अरे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो जगन्नाथपुरी में आके भगवान जगन्नाथ को रिझाने के लिए अलग अलग तरह से कीर्तन करते हैं और वाद्य बजाते हैं और ऐसा सब भगवान के सामने नृत्य करते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम ऐसा नृत्य और ऐसी हरि ध्वनि कहीं नहीं देखी यार कहीं नहीं सुनी, मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कभी सुनी है क्या। तो भट्टाचार्य बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनको उत्तर देते हैं, भट्टाचार्य कहे प्रभु मधुर वचन चैतन्य सृष्टि प्रेम संकीर्तन। तो बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है ये प्रेम संकीर्तन है, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। और ये देख के श्री चैतन्य महाप्रभु एक घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और एक बात कहते हैं, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे ए रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। किसने सोचा था इधर अबू धाबी में मुस्तफा में बैठ के हम लोग इतना जोर से घमासान कीर्तन करेंगे, ये नित्यानंद प्रभु की वाणी है। ये नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे ग्रामे ग्रामे हर ग्राम में क्या होगा, हरि नाम का उच्चारण होगा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। तो ऐसा हो रहा और वहां पे से उन्होंने और फिर अपने स्नेही भक्तों को छोड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गए क्योंकि उनका प्रचार करना था, प्रचार ही सार है। वो प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े तो कविराज गोस्वामी कहते हैं मत्त सिंह प्राय प्रभु करीला गमन प्रेमावेश या करी नाम संकीर्तन। बोले कैसे चल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, एक पागल सिंह के जैसे, एक शेर जो होता है मतवाला शेर जैसे चलता है जंगल में उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु चले जा रहे थे और चलते चलते पूरी दुनिया को कृष्णमय बनाते जा रहे थे और ये गा रहे थे कृष्णा 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 हे Stop! आगे बढ़ रहे थे और आगे जाते जाते क्या कर रहे थे कि जो व्यक्ति आता था श्री चैतन्य महाप्रभु उसको कहते थे कि हरी 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 हरी, आप हरी का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। और जैसे व्यक्ति हरे कृष्णा कहता था उसकी भी ऐसी हालत हो जाती थी, आंखों से आंसू निकलने लगते थे, शरीर में कंपन होने लगता था, श्वेत कंप ये सब जो है उसके शरीर में होता था। कीबा मंत्र दीला गोसाई कीबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र होइला पागल। अरे बोले ओ गोसाई आपने क्या मंत्र दिया ये कि जैसे मैं इसको जपता हूँ मैं पागल होते जा रहा हूँ। और इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो था, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर प्रीचिंग आंदोलन और उनका प्रीचिंग स्टाइल, कैसे वो प्रीचिंग करते थे उसके बारे में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि वो जाके क्या करते थे और जिससे मिलते थे चैतन्य महाप्रभु उसका आलिंगन करते थे, एम्ब्रेस सबसे पहला ई। कतक्षण रही प्रभु तारे आलंगिया, विदाय करिया ताहा शक्ति संचारिया। के जैसे ही उन्होंने एम्ब्रेस किया पूरा अपना शक्ति जो है वो उस व्यक्ति के अंदर वो डाल देते थे। तो सबसे पहले आलिंगन एम्ब्रेस एंड देन एम्पावर, उसको इतना एम्पावर करते थे कि पूरा का पूरा शक्ति उसके अंदर आ जाता था एंड देन ही वुड एंजॉय। तीसरा ई एंजॉय होता था, पूरा खुश हो जाता था वो, इतना एकदम उसकी हालत होती थी। और वो फिर आगे बढ़ के और जाके दूसरों को प्रचार करता था और दूसरों को बताता था। तो इसके लिए हमारे को भक्ति में आनंदित होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीचिंग करते हैं तो लोग देखेंगे कि अरे प्रीचिंग अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा बनना है, नहीं तो हम लोग किसी को जाके बोलेंगे प्रभु जी आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वो बोलेगा ये सब तो ठीक है लेकिन आप मुंह लटका के क्यों बैठे। अगर आपका मुंह लटका हुआ है तो कोई व्यक्ति कहां उससे उत्साहित होगा। सो ए हैप्पी डिवोटी प्रीचेस, यू नो, एक जो हैप्पी डिवोटी है जिसके पास प्राण है, प्राण आछे यार से हेतु कचार, तो जिसके पास प्राण है जो हैप्पी है खुश है वो जाके दूसरे को बताएगा तब व्यक्ति देखेंगे, नहीं तो खुद हम लोग मुंह लटका के बैठे हैं और बोलेंगे यार क्या है मेरे को भक्ति में कौन लेके आया, कौन मेरा शिक्षा गुरु है, कौन मेरा पथ प्रदर्शक गुरु है, कहां मेरे को ला दिया इतना सारा, मतलब पहले मैं जैसा मन में आता था वैसा करता था, जो मन में आता था वो देखता था, जो मन में आता था वो खाता था, अभी खाने का पहले चार बार सोचना पड़ता है चार नियमों में तो नहीं आ रहा है ना, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहा हूं कि नहीं ये इंग्रेडिएंट क्या लिखा हुआ है, E70, 75, 80 सब क्या है। तो इतना नहीं, तो जो कुछ भी अगर हम कार्य करते हैं खुशी होकर करेंगे, अच्छे से करेंगे और प्रेम के साथ करेंगे उसका दूसरों पे इफेक्ट होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने संचार किया और वो संचार लेके वो आगे बढ़ा। सही जन निज ग्रामे करिया गमन, कृष्ण बोले हंसे कांधे नाचे अनुक्षण। तो उसके साथ क्या हुआ कि जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसको प्राप्त हुई वो अपने गांव में गया। तो चैतन्य महाप्रभु तो रास्ते पे चलते जा रहे थे और मिलते जा रहे थे लोगों को, ऐसा कोई हर गांव में नहीं गए थे वो, लेकिन वो व्यक्ति गांव में गया। सही जन निज ग्राम में करिया गमन, कृष्ण बोले हंसे कांधे नाचे अनुक्षण। तो ऐसा आप लोग भी जब गांव में जाते हैं तो कुछ लोग आपको देख के बोलेंगे अरे प्रभु जी आपको क्या हो गया, आप पहले तो ऐसा नहीं था अभी ऐसा कैसे हो गया करके। लेकिन अगर हम सिंसियर है तो दूसरा व्यक्ति उसको देख के सुनेगा, तो वह व्यक्ति जब दूसरों को हरिबोल बोलता था तो वो शक्ति उसमें संचारित हो जाती थी और ये मल्टीपल इफेक्ट होता था और ऐसे धीरे 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 सारे के सारे जो लोग थे वो वहां पर भक्त बन जाते थे और पूरा गांव का गांव जो था वो भक्त बन जाता था। अपना एक्सपीरियंस अपना इंथुजियाज्म वो कंटेजियस था, पास करते थे। तो फिर क्या होता था कि जारे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम, ए मत वैष्णव कैलास सब निज ग्राम। तो जिससे मिलता था वो जाके कहता था प्रभु जी हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा का जप करो, है क्या नहीं, यही तो काम है। हमको चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमर आज्ञा गुरु हो तारो ही देश, चार लाखों तारे कहो कृष्ण उपदेश। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, अमर आज्ञा जाओ करी हो प्रकाश, प्रति घर घर जाओ करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो जा जाके हर किसी को बताता था और पूरा पूरा गांव जो था वो कन्वर्ट हो गया और पूरा गांव जो था वो वहां पे कृष्णमय बन गया। तो दूसरे गांव से कोई व्यक्ति इस गांव में आया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो सब लोग डिवोटी बन गया है, सब लोग दास है, सब लोग हरे कृष्णा हरि बोल सब ऐसा बोल रहा है। तो वो आके और धीरे 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 उसको ये कंटेजियस डिजीज हो गया, वो भक्त बन गया। तो जैसे एपिडेमिक होता है ना, हैजा संक्रमण जो फैलता है संक्रमण पूरा, तो एक काया वो डिवोटी बन गया, फिर वो क्या किया अपने गांव में गया, तो गांव नंबर वन डिवोटी, उसमें एक व्यक्ति गांव नंबर टू से आया और वो दूसरे गांव वाला आके गांव नंबर टू में गया और वहां सबको डिवोटी बना दिया, और वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति आया उसको पूरा पूरा गांव चैतन्य महाप्रभु कन्वर्ट करते गए। ग्रामांतर है ते देखिते आइला यते जन तार दर्शन कृपा है तारयासम, और फिर एक्सचेंज होने लगा, इस प्रकार से डिवोटी लोगों का एक्सचेंज हुआ। से यही ग्रामीण लोग वैष्णव करिया अन्य ग्रामिया से तारे देखी वैष्णव होया, और दूसरा व्यक्ति गांव में आया उसको देखा वो वैष्णव बन गया, और इस तरह से क्या होने लगा श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन एक्सपांड होने लगा और एक्सप्लोड होने लगा, तो पूरा एक्सप्लोजन हरे कृष्ण एक्सप्लोजन पूरा एक्सप्लोजन होने लगा और वो आगे बढ़ते गए। से आई यार ग्राम में करे उपदेश ए मत वैष्णव होइला सब दक्षिण देश, तो बोले कि पूरा का पूरा दक्षिण देश जो है वो भक्तों से बन गया और सारे के सारे वहां पे डिवोटी हो गए, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सप्लोजन है वो आगे बढ़ने लगा। ए मत पठ याते सत सत जन वैष्णव करे न तारे करी आलिंगन। चैतन्य महाप्रभु का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, जिसको मिलते थे उसको हरी हरी बोलने के लिए बोलते थे और उसका आलिंगन करते थे, पूरा शक्ति संचारित हो जाता था और ऐसे आगे जा जाके और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने क्या किया, ही एलिवेटेड द पीपल, उनको महाभागवत बना दिया, एक बार टच किया उस टच से महाभागवत बना दिया। प्रभु र कृपाए होए महाभागवत से ही सब आचार्य होए तारिला जगत। तो आप देखो प्रभुपाद जी ने क्या किया, रूस में गए थे, रशिया में गए थे केवल 3 दिन के लिए श्याम सुंदर प्रभु के साथ, और साथ में कोई नहीं था, उसके बाद प्रभुपाद कभी रशिया नहीं गए, लेकिन उस रशिया के अंदर वो किसी से मिल भी नहीं पाए थे, एक लड़का उनको मिला, प्रभुपाद ने अपना शक्ति संचारित किया उस एक लड़के के हृदय में, उस एक लड़के ने आज पूरा रशिया को डिवोटी बना दिया। और आप देखो जब प्रोग्राम होता है जैसे यहाँ पे, तो इस देश के अंदर हम लोग इंडियन और बांग्लादेशी लोग बैठ के और चैतन्य महाप्रभु की कथा सुन रहे हैं, लेकिन रशिया में तो पूरे रशियन लोग 10,000-14,000 लोग साधु संघ का ऐसा जो फेस्टिवल होता है उसमें आते हैं, और इतने सारे डीटीज है और सब लोग रशियन लोग और चाइनीज लोग और इतने सारे जो पूरी दुनिया में जो लोग है, प्रभुपाद ने जिसको पकड़ा उसको हाथ लगाया उसको हीरा बना दिया, और वो हीरा आगे जाके और वो प्रचार करने लगा। और आज ऐसे लोगों को हम लोग पूछते हैं जो फॉरेनर लोग हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, और सब लोग को प्रभुपाद ने क्या किया, पूरा पूरा जैसे चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे संसार को उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्त बना दिया। बोलो श्रीला प्रभुपाद की। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और बात लिखते हैं उसके अंदर, वो कहते हैं कि नवद्वीप यही शक्ति ना करीला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशे निस्तारीला दक्षिण देशे। तो बोले कि उन्होंने ये जो शक्ति का संचार नवद्वीप में नहीं किया था लेकिन दक्षिण भारत में जाके किया। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि अगर प्रीचिंग करने की बरोबर से फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वहां पे ज्यादा सर नहीं फोड़ना चाहिए। प्रभुपाद अपना एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की भारत के अंदर लोगों को बताने के लिए कि कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान है, लेकिन किसी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, उल्टा लोग आके मुझे गीता भागवत पढ़ा रहे थे, तो मुझे अमेरिका जाना पड़ा। गुरु की आज्ञा पर मैं अमेरिका गया और अमेरिका में जाके मैंने प्रचार किया और वहां से सारे भक्तों को लेके आया, और आज पूरा का पूरा जो देश है, मोर सेनापति चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा एक सेनापति आएगा श्रील प्रभुपाद और वो आके पूरी दुनिया को कृष्ण भक्त बनाएंगे। तो इस प्रकार से एग्जिट उन्होंने दक्षिण देश में जाके और इतना सब प्रचार किया, और वो प्रचार करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों को लीला के अंदर प्रवेश कराया। अभी कोई ऐसा सोच सकता है कि प्रभु जी यहाँ पर आपने कहा कि पूरा दक्षिण देश जो है वो डिवोटी बन गया, लेकिन हम लोग साउथ इंडिया से है, हमने तो नहीं देखा इतना सारा डिवोटी लोग, तो ये सही है कि गलत है कि नहीं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते कि नहीं, डाउट मत करना, जब चैतन्य महाप्रभु थे तब ये पूरा का पूरा देश जो था वो सब डिवोटी बन गया, और वो कहने लगे के प्रभु प्रभु के भजे तारे तार कृपा होए से ही से सब लीला सत्य करी लय। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, अलौकिक लीला यार ना होए विश्वास इहलोक परलोक तार होए नाश। तो बोले कि अगर इसको विश्वास नहीं करोगे तो ऐसे है कि जैसे कोई साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के जैसे है, वो चेकमेट कर रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर थे तो पूरी दुनिया को, पूरे दक्षिण देश को उन्होंने क्या किया, भक्त बना दिया। और उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत भूमि से जन्म होले मनुष्य जात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और पूरा ग्रामे ग्रामे देशे देशे हर जगह पर जो होगा मेरा नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो ही मोर नाम। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि सर्वत्र प्रचार कहाँ पे हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा एक भक्त आएगा आगे, और वो भक्त आया श्रीला प्रभुपाद जी, और उन्होंने पूरे पूरे दुनिया के अंदर, तो आज ऐसा दुनिया का कोई भी कॉर्नर नहीं है, हम लोग भी देखो इधर मिडल ईस्ट में बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हर जगह, चाहे वो रूस है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, या कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, हर जगह पर प्रभुपाद जी की कृपा से आज कृष्ण भक्ति की लहर जो है वो बह रही है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, सब लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सोचा था कि सारे के सारे लोग सब मिलके एक साथ हाथ पकड़ कर क्या बोलेंगे, जय सच्चिदानंदन गौर हरि, जय सच्चिदानंदन गौर हरि, जय सच्चिदानंदन गौर हरि, हर देश हर गांव में पृथ्वी थे आशे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मोर नाम। तसला प्रभुपाद जी ने प्रचार लगाया श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और चैतन्य महाप्रभु फिर वहां से आगे बढ़े। प्रेमावेश से हंसी कांदे नृत्य गीत कैला, देखी सर्व लोक चित्ते चमत्कार होइला। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे आगे बढ़े, और वैसे लीला तो बहुत लंबी और बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा टाइम हो गया, हॉल का 6 बज गए हैं, तो हम यहीं पे उसको विराम देंगे, और कभी मौका मिलेगा तो हम वापस से इस लीला को और आगे बढ़ा के, क्योंकि इसमें फिर वो बताते हैं कि कैसे वो कुर्म ब्राह्मण से मिले और कुर्म ब्राह्मण का उद्धार किया, फिर आगे जाके वो रामानंद राय से मिले, रामानंद राय के साथ संवाद किया, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते कई लोगों से ऐसा मिले, और बाद में वो इधर गए कावेरी श्रीरंग क्षेत्र में, और वेंकट भट्ट को मिले जो गोपाल भट्ट के पूर्वज है, और वेंकट भट्ट के साथ मिलके और उन्होंने बहुत सा संवाद किया, चतुर्मास वहां पर बिताया, और वो बिताने के बाद वापस से फिर वो श्री जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में आके और फिर अपने स्नेही भक्तों से मिले। तो ये पूरा टूर है उनका साउथ इंडिया का, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है तो इसको कर नहीं पाएंगे, हम लोग यहीं पे इसको विराम देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की।
तो बहुत ही बहुत आनंद ही आनंद आया महाप्रभु की लीला के बारे में, हम लोग हम लोग सब मिलकर श्रवण किया, तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद देंगे, 3 बार हरे कृष्ण श्रवण करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
तो अभी कुछ पहले मैंने थोड़ा सा अनाउंसमेंट किया था जो गोरखपुर विमान के बारे में, तो हमारे पास कुछ इन्विटेशन कार्ड है यहाँ पर, तो अगर आप आपके जो कंपनी में कोई इस तरह का जो भक्त और कोई भी आदमी रहेगा जो हमारे जो गोरखपुर में कुछ सेवा कर